તારીખ 27/9/1990 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ઈડરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 28.
ઉપયોગ અંતર્મુખ સહજ થવામાં પૂર્વ કર્મ જે પ્રકારે પરિણામ નો થવો ઘટે એ પ્રકારે થાય તો સહજ જ ઉપયોગ અંતર્મુખ થાય છે. એક માની ધર્મે એમ કહેવાય કે ઉપયોગ અંતર્મુખ કરવો છે, પણ ખરેખર તો ઉપયોગ અંતર્મુખ સહજ થાય એ અંતર્મુખને વાસ્તવિક અંતર્મુખ થવાની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે. એમ થવા માટે જેમાં જેને અવલંબીને અંતર્મુખ થવું છે એવું જે અંતરતત્વ સ્વરૂપ પોતાનું જે પરમ તત્વ છે, પરમાત્મા તત્વ છે, એનો અપૂર્વ મહિમા અને એ અપૂર્વ મહિમા ના કોઈ એક અસાધારણ તબક્કે ઉપયોગ અંતર્મુખ થઈ જાય છે, સહજપણે થઈ જાય છે. એ પરમ તત્વનો જે મહિમા છે એ પરમ તત્વની ઓળખાણ વગર બીજી કોઈ રીતે ઉત્પન્ન થવો સંભવિત નથી. એટલા માટે આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ થવી, નિશ્ચય થવો, ભાવન થવું, લક્ષ્ય થવું, એટલા માટે જીંગપણ અને નીચપણ એકતા ભેદભાવ નહીં કોઈ લક્ષ્ય થવાની છે. આપણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય શા માટે કે જેવું જીનપદ છે એવું જ નિધપદ છે એવો લક્ષ થઈ જાય, તો જેવો જૈનેન્દ્ર પરમાત્માનો મહિમા આવે છે એવો જ સ્વરૂપનો મહિમા આવે, અને સ્વરૂપ પોતે જ હોવાથી અભિન્ન ભાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય. એ અભિન્ન ભાવને અંતર્મુખ ઉપયોગ કહે છે, કેમ કે ત્યાં પછી ઉપયોગ અને ઉપયોગ માનની ભિન્નતા નથી રહેતી, અથવા દ્રવ્યન પર્યાયના ભેદ ત્યાં માલુમ પડતા નથી, વિલીન થઈ જાય છે. એટલે એ વાત થઈ કે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરતા સ્વરૂપ લક્ષ થવો એટલે કે સ્વરૂપ નિશ્ચય થવો, અને એ સ્વરૂપ નિશ્ચય અને લક્ષ્યને કારણે મહિમા એકદમ વૃદ્ધિગત થઈને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ થઈ જાય, આટલો એનો પ્રક્રમ છે. એવું લાગવા માંડે ત્યારે હું મનુષ્ય છું, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, હું ફલાણા નામ ધારી છું, એવું જે લાગે છે લાગવું બંધ થઈ જાય, એવું એક લક્ષ્યની સાથે લાગવાનો સંબંધ છે. જાણવું એક વાત છે, લાગવું બીજી વાત છે. એ નિશ્ચયના કાળમાં લાગવું થાય છે. તમામ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય, સમસ્ત શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આ નિશ્ચય અર્થે છે. જો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય અર્થે નથી, પણ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય નિશ્ચય થવા અર્થે છે. આટલા લક્ષ્મી શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય થાય તો નિશ્ચય થઈ શકે છે. હવે નિશ્ચય થવાનું બીજું નામ ઓળખાણ થવી છે. ઓળખાણ થવાનો એક જ પ્રકાર છે કે પરિચય વગર ઓળખાણ નહીં થાય. એક વ્યક્તિગત પણ શું થાય છે કે આપનો પરિચય ન હોય તો મને ખબર ન પડે કે આપ કેવા છો, મારો પરિચય ન હોય તો આપને ખબર ન પડે કે હું કેવો છું. તો પરિચય થયા પછી આપ કોઈને પણ કહી શકો અથવા હું કહી શકો કે ભાઈ હું ઓળખું છું, હું જાણું છું કે કેવા છે. એવી જે ઓળખ છે એ ઓળખ માટે પરિચય સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તો અહીંયા તો જીનપદ જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવનો પરિચય કરવો છે. તો એ પરિચય કરવા માટે શું થયું, આત્માને ઓળખવા માટે કૃપાલ દરે શબ્દો કયા કે આત્માને ઓળખવા માટે આત્માના પરિચય થવું, આ તો કૃપાલ દરની આજ્ઞા શું. તો પરિચય સ્વભાવનો પરિચય કેવી રીતે થાય? અગર એ સવાલ થયો તો માત્ર બહિર્લક્ષી જ્ઞાનથી શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરતા પણ સ્વભાવનો પરિચય નથી કરતો. કેમ કે પરમાર્થાત્મા તો પોતાના છે, પરમાર્થાત્મા કંઈ પોતાનો શાસ્ત્રમાં તો નથી, ત્યાં તો એક નકશો ભરેલો છે કે તું આમ ચાલ, તો આમ ચાલ, આમ ચાલ, આમ ચાલ, આમ ચાલ છે. ચાલવાની વાત જુદી છે, નકશો જુદી ચીજ છે. એટલે એ તો ખાલી માર્ગદર્શનનો વિષય બને છે. એ પરિચય થવા માટે અવલોકનનો પ્રયોગ છે અને ભેદ જ્ઞાનનો પ્રયોગ છે, એનાથી પરિચય થાય છે. અત્યારે જે અત્યારે જે પ્રશ્ન શરૂ થશે એ થોડો આ વિષય ઉપર પ્રશ્ન છે અને વધારે સ્પષ્ટ થશે એ વિશે આપણે પ્રશ્ન લઈએ કે મુમુક્ષુ દશામાં ભેદ જ્ઞાન કેવા પ્રકારનો તથા કઈ વિધિ કરવા યોગ્ય છે કે જેથી ક્રમભંગ ન થાય, એટલે પ્રક્રમ બરાબર જળવાય. હવે સામાન્ય રીતે જે શસ્ત્રોની અંદર જ્ઞાન દશામાં ભેદ જ્ઞાનનો વિષય પ્રચલિત છે, એ જ્ઞાનીઓ છે એ સ્વવિકલ્પ દશામાં ભેદ જ્ઞાનમાં વર્તે છે અને નિર્વિકલ્પ દશામાં શુદ્ધ ઉપયોગમાં વર્તે છે. તો ખરેખર તો જે ભેદ જ્ઞાન શબ્દનો યથા સ્થાને કોઈ ઉપયોગ હોય તો તે જ્ઞાન દશા પછીનો છે. પણ એવી જ્ઞાન દશા કોને થાય છે કે જેવું જ્ઞાન દશામાં ભેદ જ્ઞાન પ્રવર્તે છે સ્વવિકલ્પ દશામાં, એવું મુમુક્ષુને તો નિર્વિકલ્પ દશા છે જ નહીં, એને સ્વવિકલ્પ દશામાં એને અનુસરતું ભેદ જ્ઞાનનો કોઈ અનુસરણ થાય, પ્રયાસ થાય એ પ્રકારનો, તો એ આગળ વધીને જ્ઞાન દશાના ભેદ જ્ઞાન સુધી પહોંચે. એટલે જ્ઞાન દશામાં જેટલા જેટલા પ્રકાર ઉત્પન્ન થાય છે એને અનુસરતા પ્રકાર મુમુક્ષુ દશામાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે મુમુક્ષુ આગળ વધીને જ્ઞાની થઈ શકે છે. આ એક અજ્ઞાન દશા અને જ્ઞાન દશા વચ્ચેની કન્ટિન્યુઇટી છે. નહીતર શું થાય છે કે અજ્ઞાન દશા અને જ્ઞાન દશા એ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. જે અજ્ઞાન દશા છે તે જ્ઞાન દશા નથી અને જ્ઞાન દશા છે તે અજ્ઞાન દશા નથી, અને બંને પ્રતિપક્ષમાં ઉભેલી દશાઓ છે. તો પછી અજ્ઞાની મટીને જ્ઞાની કેવી રીતે થાય? આ એક સમસ્યા ઉભી થાય છે. તો એવું કાંઈ પણ હોવું જોઈએ, એવું કાંઈક હોવું જોઈએ કે જે અજ્ઞાન દશામાં અને જ્ઞાન દશામાં કન્ટિન્યુ રહેતું હોય. એવું શું હોઈ શકે? તો એવું એ છે કે જે જે જ્ઞાન દશાની અંદર પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે જે જે પ્રકારે, જેમ કે સમ્યક દ્રષ્ટિના આ ખંડ છે સમ્યક દર્શનના, એમાં જે જે પ્રકારો છે, પછી આ ભેદ જ્ઞાન વગેરે છે, નાતા દ્રષ્ટાપણ છે, એ જે જે પ્રકારો છે એ બધા પ્રકારોનો અનુસરતો ભાવ મુમુક્ષુ દશામાં ચાલુ થાય છે. અને એ ભાવ વિકાસ પામીને જ્ઞાન દશાની અંદર પ્રવેશ કરાવે છે એક તબક્કે. એટલે અહીંયા એક પ્રશ્ન જે આપણે શરૂ થાય છે, એ પ્રશ્નની અંદર ભેદ જ્ઞાનનો એક મુદ્દો લીધો છે કે મુમુક્ષુ દશામાં ભેદ જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું, અથવા કઈ રીતથી, કઈ વિધિથી, કઈ પદ્ધતિથી કરવા યોગ્ય છે કે જેથી ક્રમભંગ ન થાય. ક્રમભંગ ન થાય એટલે શું છે કે પછી કરવા યોગ્ય પહેલું ન થાય, પહેલા કરવા યોગ્ય પછી ન થાય, પહેલું કરવા યોગ્ય પહેલું થાય ને પછી કરવા યોગ્ય પછી થાય, એનું નામ ક્રમ છે. એ સંબંધની વાત આપણે અત્યારે ચર્ચા કરવી છે અથવા વિચારવું છે. ભેદ જ્ઞાન એ બે ભાવો વચ્ચેનો વિધિ નિષેધાત્મક પ્રકાર છે. બે ભાવની અંદર એક વિભાવ ભાવ છે, એક સ્વભાવ ભાવ છે. નિષેધ વિભાવનો છે અને વિધિ અર્થાત આદર છે એ સ્વભાવનો છે. તો ભેદ કરવો એનો અર્થ કે જુદા પાડવું. ભેદ એટલે અહીંયા જુદા પાડવું, ભેદ જ્ઞાન કરવું એટલે જુદા પાડવું, આ એનો સાદો અર્થ છે. તો જુદા પાડવામાં તો બે હોય તો જુદા પડાય, એકને જુદા પાડવાનો ક્યાં પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થાય છે. તો કે વાસ્તવમાં જીવના પરિણામમાં જે વિભાવ છે અને જીવમાં જે સ્વભાવ છે, એ સ્વભાવ અને વિભાવ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ તત્વો છે અને તેને જુદા પાડવા જોઈએ. એ બંનેનું એકત્વ તે જ અજ્ઞાન છે, તે જ મિથ્યાત્વ છે અને તે જ પરિભ્રમણનું અથવા જન્મ મરણનું કારણ છે. એટલે એ બંને જુદા પાડવા એ મુખ્ય કાર્ય છે આ માર્ગદર્શન. જ્ઞાન દશામાં પ્રવેશ કર્યા પહેલા પણ આ કાર્ય પદ્ધતિ શરૂ થાય છે અને જ્ઞાન દશાની સંપ્રાપ્તિ પછી પણ આ જ કાર્ય પદ્ધતિ ચાલુ રહે છે. સમય સારાની જ્ઞાન ગ્રંથોમાં આચાર્યએ ત્યાં સુધી વાત કરી અમૃતચંદ્રાચાર્ય કે ભેદ જ્ઞાન છે એ નિરંતર ભાવવા યોગ્ય છે અથવા થવા યોગ્ય છે. ક્યાં સુધી? જ્ઞાન જ્ઞાને પ્રતિષ્ઠિતમ. ભેદ જ્ઞાન અછિન્ન ધારાથી, એવો શબ્દ લીધો છે, અછિન્ન ધારાથી ભેદ જ્ઞાન થવું જોઈએ, અતૂટકપણે થવું જોઈએ. ક્યાં સુધી? કે જ્યારે ઉપયોગ છે એ જ્ઞાન સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ જાય ત્યાં સુધી, સર્વથા સ્થિર થાય ત્યાં સુધી. તૂટકપણે સ્થિર થાય તો પણ ભેદ જ્ઞાન ચાલુ રાખવું, એટલે અવારનવાર શુદ્ધ ઉપયોગ થાય, અંતર્મુખ ઉપયોગ થાય, ત્યારે બહિર્મુખ ઉપયોગ થતા જે સ્વવિકલ્પ દશા થાય એમાં ભેદ જ્ઞાન ચાલુ રાખવું. આમ મોક્ષ માર્ગની અંદર આવેલા ધર્માત્માઓને પણ આ ઉપદેશ છે આચાર્ય ભગવંતો. આપણો પ્રશ્ન તો છે કે મોક્ષ દશામાં એ કેવી રીતે થાય, એ આપણે અત્યારે વિચારવું છે. અહીંયા એ વાત લીધી છે કે ભેદ જ્ઞાન નો નિષેધ જો વિચારીએ, ભેદ જ્ઞાનમાં વિધિ અને નિષેધ બંને છે એ વાત થઈ આપણે. તો નિષેધનો જો વિચાર કરવો છે તો નિષેધ કોણ? કે વિભાવનો નિષેધ છે. ભેદ જ્ઞાન એ વર્તતા વિભાવના નિષેધ પૂર્વક પ્રગટ સ્વભાવનો આદર છે. આવું એક અનેકાંત છે વિધિ નિષેધ. એકાંત નિષેધ અને સ્વભાવનો આદર નહીં એ ભેદ જ્ઞાન નથી. સ્વભાવનો આદર થાય અને વિભાવનો નિષેધ ન થાય એવું જો બને તો એ પણ વિપરીત અભિનિવેશ પૂર્વક રહ્યા છે. સ્વભાવનો તો અમે આદર કરીએ પણ વિભાવનો નિષેધ ન કરીએ, એ વાત વિપર્યાસ સહિતનો આદર છે. એ આદર સાચો નથી, ખરો નથી, યથાર્થ નથી. એટલે ભેદ જ્ઞાનની અંદર એક પરિણામ, ભેદ જ્ઞાનનું એક પરિણામ આવા અનેકાંતિક વલણ વાળો છે કે જિસમે ભેદ જ્ઞાન કા, જિસમે વિભાવ કા અનાદર હૈ, નિષેધ હૈ, ઓર સ્વભાવ કા આદર એક સાથ હૈ. પંચાધ્યાયી જો ગ્રંથ હૈ ઉસમે નિશ્ચય નય કી પરિભાષા ઇસ તરહ કી હૈ કે નિશ્ચય નય કિસકો કહેવે, કે જો વ્યવહાર કા નિષેધ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે ઉસકો નિશ્ચય નય કહે. વરના તો નિશ્ચય નય કા હી પરિભાષા હૈ કે જો નિશ્ચય સ્વરૂપ કો ગ્રહણ કર લેવે ઉસકો નિશ્ચય નય કહેતે. જો જ્ઞાન का प्रयोजन निश्चय शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण करने का रहता है उसको निश्चय नहीं कहते हैं. लेकिन वहां ऐसी भाषा नहीं करती, परिभाषा ऐसी करती कि जो व्यवहार का निषेध करे वही निश्चय है, ऐसा कहते हैं. तो ये व्यवहार क्या चीज है कि जितने भी राग रूप परिणाम है जहां विभाव है वहां उसका निषेध है. ये जो विषय है वो तो ध्यान से ग्रहण करने लायक चीज है जीवन, क्योंकि ये भी एक विधि का मुख्य अंगभूत जो बात है वो भी ज्ञान में भी है. वेद ज्ञान ये वर्तते विभाव के निषेध पूर्वक प्रगट स्वभाव का आदर है. इसका अर्थ क्या है? अर्थात विभाव में जो अहमपना हो रहा है उसका निषेध पूर्वक ज्ञान स्वभाव में स्वयं रूप से अपना अस्तित्व ग्रहण करने का जो पुरुषार्थ है, कार्य पद्धति है, उसको हम भेद ज्ञान कहते हैं. क्या कहना है, दोनों बात एक साथ हो. एक दफे एक प्रश्न चला था पूरी बहन श्री के समक्ष. ये प्रश्न ऐसा चला, एक मुमुक्षु भाई ने ऐसा कहा कि हमें तो नास्तिक से कोई हमारा प्रयोजन नहीं, मैंने विभाव से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, विभाव तो हमें चाहिए ही नहीं, विभाव के सामने हमें देखना ही नहीं, और हम हमारा त्रिकाली दूर स्वभाव का ही आदर करते रहे तो क्या हमारी ये कार्य पद्धति सही है क्या? यही विषय प्रश्न था. भेद ज्ञान में तो विभाव का निषेध है और स्वभाव का आदर है, लेकिन हमको तो ये जो विभाव का निषेध वाली जो बात है उस शहर में जाना ही नहीं. हम तो हमारे त्रिकाले अस्थि स्वभाव को ऐसा पकड़े उस पर उतना जोर दें कि हम उसमें अंतर्मुख होकर तन्मय हो जाए, तो क्या हमारी ये कार्य पद्धति ठीक है कि नहीं है? ये ऐसा एक प्रश्न चला है.
जी,
तो दिवेंद्र ने ये कहा कि विभाव मुमुक्षु की भूमिका में या छद्मस्थ की भूमिका में उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं। पर जब ये अनिवार्य से अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता ही है तब इसका निषेध होना भी अनिवार्य हो ही जाता है। तो अपने स्वयं के शब्द में कुछ वैंश ने ये बात कही थी कि आप ये कहते हो कि विभाव का निषेध हमें नहीं करना है, ऐसी बात हमें बीच में लानी ही नहीं है। स्वभाव की पकड़ हम ऐसी करना चाहते हैं कि विभाव का निषेध करने की बात ही हमको बीच में नहीं लानी है, क्योंकि हमको तो ध्रुव धाम पर ही पकड़ जमानी है। लेकिन ये बीच में विभाव आए बिना रहेगा नहीं, आपको नहीं करना है वो बात जरूर है, लेकिन जो आए बिना नहीं रहता है इसका क्या करें, सवाल ये है। तो उसका निषेध होना अवश्य आवश्यक है, जरूरी है। ये प्रश्न चला था
जी मैं।
मैंने खास करके दृष्टि प्रकाश का प्रकाशन के बाद ये जो ध्रुव की पकड़ वाली बात है उस विषय में कुछ एक मुमुक्षुओं को इस प्रकार का एक अभिप्राय हो गया है कि हम तो अस्थि के पीछे लग जा रहे हैं पर नास्ते का स्मरण भी नहीं आने दे, बीच में नास्ते को आने ही नहीं दे। लेकिन ये बात असंभव है, प्रैक्टिकली ये बात बन ही नहीं सकती। इसलिए मेरे ज्ञान की प्रक्रिया में विधि निषेध है
जी।
तो विभाव में जो अनुपणा हो रहा है मुमुक्षु की भूमिका में उसका निषेध होना चाहिए, और ज्ञान स्वभाव ही स्व है, उस में अपना अस्तित्व मैंने अहम पढ़ा ग्रहण करने का एक पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसी जो विधि है ऐसी विधि को फिर ज्ञान मुमुक्षु की भूमिका में कहने में आता है, ये वास्तव में फिर ज्ञान का प्रयास रूप विधि है। अतः ऐसा भेद ज्ञान परमार्थ मार्ग का प्रयत्नमान जीव को सहज रूप से होने योग्य है, उसमें कृत्रिमता का सवाल पैदा नहीं, सहज रूप से होने योग्य। ये सहज रूप से कैसे इसका विचार करें कि आपको विभाव नहीं चाहिए, ये बात तो फाइनल हो गई है अभिप्राय में कि हमें विभाव नहीं चाहिए। परिपूर्ण जिसको शुद्ध होना है उसको तो विभाव एक कलंक है, तो जो कलंक नहीं चाहिए फिर भी वो कलंक खड़ा होता है, तो अगर इसका निषेध नहीं आया तो अनुमोदन हुए बिना रहेगा नहीं, ये आपत्ति है। अगर उत्पन्न होने वाला विभाव के प्रति निषेध नहीं आया तो इस विभाव का अनुमोदन हो ही जाएगा, ये भी अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य रूप से हो जाएगा। इसलिए ये परमार्थ मार्ग का जो प्रयत्नवान है, परमार्थ मार्ग पाने के लिए जो प्रयत्नवान है उसको सहज रूप से उसका निषेध आ जाता है, हो जाता है, कर्तृत्व रूप से नहीं किया जा सकता, सहज होता है, करने लायक है इसलिए करो वो बात माननी है। दूसरा गुरुदेव के शब्द में अगर इस विषय को ले तो भेद ज्ञान का लक्षण यही है कि जिसमें विभाव की अरुचि हो, एक लाक्षणिक तौर पर गुरुदेव ने वेद ज्ञान की परिभाषा की, लिया है गुरुदेव ने अपने वचनामृत 307
जी।
ज्ञान और राग के बीच में वेद ज्ञान होने का ये लक्षण है कि ज्ञान में राग के प्रति तीव्र अनादर भाव जगे, यही इसका वेद ज्ञान का लक्षण, लाक्षणिक तौर से ये बात बताई।
ये
दृढ़दृष्टि प्रकाश पढ़कर के जिसको इस पहलू का पता नहीं है उनको तो कभी ऐसे भी आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है कि देखिए ये दृढ़ दृष्टि प्रकाश का जन्म हुआ है जिस सुगणी जी से हुआ है, उस सुगणी जी का जन्म कहाँ से हुआ है? उन्होंने पहले ये सुना है कि राग और ज्ञान भिन्न है, वहां से उनका एक नया जन्म हुआ है, एक भव में दो भव हो गए। ज्ञान क्या होता है? एक नया जन्म होता है आत्मा का। वो कहां से हुआ? कि जब गुरुदेव के श्रीमुख से उन्होंने प्रवचन में ये बात सुनी कि ज्ञान और राग भिन्न है, तब से उनका नया जन्म हुआ है। फिर ये सब बात ध्रुव के धाम की चली है, लेकिन ये विस्मरण करने योग्य नहीं है कि मूल बात आई कहाँ से। यानी ये बात हमारे सामने खड़ी है तो उसका जो स्रोत है वो कहाँ है, प्रभाव स्थान कौन है, उद्भव स्थान कौन सा है, ये हमको स्मरण नहीं करना चाहिए। ये बात यह है
जी,
ज्ञान और राग के बीच में वेद ज्ञान होने का ये लक्षण है कि ज्ञान में राग के प्रति तीव्र अनादर भाव जगे, यह ज्ञान और राग के बीच में वेद ज्ञान होने का लक्षण है। आत्मस्वरूप में राग की दंड भी नहीं, मूल स्वरूप में जिन पद निज पद एकता क्या, राग का जितने विकल्प उठते हैं उसमें खुद जलता है, दवा होता है राग आग रहे सदा ताते समान से। मैंने ये एक विकल्प में भी दवा होना चाहिए, मैंने बढ़ता जैसे कोई अग्नि लगे तो बढ़ता होती है, ऐसा जब लगता है ऐसा दुख होता है और आत्मा जो आनंद अमृत का कंद है उसके आगे राग मात्र जहर है। करक शब्द प्रयोग है गुरुदेव का, जहर है। ऐसा पहले ज्ञान में निर्णय करे, ऐसा निर्णय होवे, निश्चय होवे स्वभाव विभाग का, राग की अपवित्रता, राग में दुख और राग में स्वभाव से विपरीत पराग्रह है, ये तीन फैक्टर है, उसका निश्चय विभाग में हो जाए और स्वभाव में ज्ञान और सुख और स्वपना अविपरीतपना, मैंने स्वपना, ये तीन फैक्टर वहां खड़ा हो जाए, जब से वेद ज्ञान प्रकट होता है, इसके पहले वेद ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये बात 307 नंबर के वचनामृत में चली है परमात्मा का
भाववासन के वक्त में।
हाँ नहीं नहीं, मैंने भाववासन तो भेद ऐसे ऐसा भेद ज्ञान परमार्थ मार्ग मार्ग के प्रयत्नवान जीव को सहज होने योग्य है। मुमुक्षु जीव भी पूर्ण शुद्धता का अभिलाषी होने से मोक्ष का अभिलाषी है, मात्र मोक्ष अभिलाष आत्मसिद्धि मुझे मात्र मोक्ष अभिलाष भले के प्राणी है ये कहिए मुमुक्षु जीव मोक्ष मैंने पूर्ण शुद्ध का शुद्धि का अभिलाषी होने से और रुचि भाव से उसका निषेध होता है, उसकी अरुचि हो जाती है। जैसे खुराक में भी ऐसा होता है, कोई चीज बिगड़ गई, कोई मिठाई बिगड़ गई या कोई चीज बिगड़ गई, उससे दूध बिगड़ जाता है, तो बिगड़ा हुआ दूध है वो छाछ से भी गया जाता है, इससे तो छाछ अच्छी है, छाछ हम खा सकते हैं लेकिन छाछ खाते हैं लेकिन बिगड़ा हुआ दूध तो हम नहीं खाते। तो बिगड़ा दूध का पता नहीं है कि ये बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, लेकिन मुंह में आने पर पता चल जाता है, आते ही क्या होगा, एकदम निश्चित हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी। ऐसे राग के प्रति हमारी अरुचि हो जानी चाहिए, राग कैसा भी हो लेकिन इसकी अरुचि होनी ही चाहिए। ऐसे वर्तमान रागादी भाव का अरुचि भाव से निषेध भाव वर्तता है, परिणमता है, और वर्तमान योग्यता अनुसार इस प्रकार से भेद ज्ञान का प्रयास चालू हो, प्रयास वर्तता हो। मुमुक्षु जीव को इस प्रकार के प्रयास पूर्वक ही तत्व ज्ञान का और सत्स्वरूप का परिचय और अध्ययन होना घटारक है, घटित है। अब क्या कहा इस बात में, जब हम वेद ज्ञान तत्व ज्ञान का या सत्स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो ये ऐसे वेद ज्ञान पूर्वक ही करें, वेद ज्ञान नहीं करे और तत्व ज्ञान का और सत्व का अभ्यास करे, ये बात घटित नहीं, अध्ययन के साथ ये बात होना चाहिए। वेद ज्ञान का प्रयास चलना चाहिए, राग का निषेध होना चाहिए और ज्ञान स्वभाव में आदर होना चाहिए। इस तरह से तत्व ज्ञान का अभ्यास भी मुमुक्षुओं को होना घटित है, अन्यथा अगर इस प्रकार से नहीं हुआ तो ये तत्व ज्ञान का और सत्शास्त्र का जो अध्ययन है वो उससे अवश्य सूक्ष्म भाव ज्ञान का बढ़ेगा, अध्ययन में तो सूक्ष्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सूक्ष्म बढ़ने से और पर्याय बुद्धि उतनी की उतनी होने से उघाड़ में अहम भाव को रोकना असंभव हो जाएगा। अगर हमें ज्ञान स्वभाव का आदर और राग का निषेध नहीं रहा तो सत्श्रुत का अध्ययन में जो ज्ञान बढ़ेगा वो ज्ञान में अहमभाव आएगा नहीं, अहमभाव हो ही जाएगा क्योंकि पर्याय बुद्धि तो है ही मिथ्या अवस्था में, इसलिए तो ये अहमभाव रोकना असंभव है। जो अहमभाव यह अहमभाव जो पैदा हो जाएगा वो क्रमशः आगे बढ़कर स्वच्छंद आदि महादोष में परिणत हो जाएगा, मैं जानता हूं मुझे इस बात का पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये वेद ज्ञान के प्रयास बिना शास्त्र अध्ययन चालू रखा और ज्ञान का उगाड़ बढ़ गया चालू हुआ और ये स्वच्छंद को ले आएगा, कहां से स्वच्छंद का जन्म हो जाता है, ये स्वच्छंद पीछे दरवाजे से एंटर हो जाता है। पाछला पाने से आ जाए। सत्शास्त्र में सत्शास्त्र में ऐसा है कि स्वच्छंद करने योग्य नहीं है। पसंद करने लायक नहीं है। और जो गड़बड़े उसमें पसंद का प्रवेश हो जाता है। मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी पसंद है। तो पसंद आदि भयंकर महादोष की उत्पत्ति होने का एक कारण बन जाता है। इसलिए मेरी यहाँ का प्रयास जो है कामें उसका बहुत महत्व है, ये होना ही चाहिए। इसलिए विभाव के विषय में निषेधात्मक बलन काफी मात्रा में, जितना हो सके उतनी मात्रा में, अपनी शक्ति हो उसी मात्रा में रहना चाहिए और चालू रहना चाहिए। अब इस विषय को चर्चा में लेते हैं, इसलिए कि आपको कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या इसमें तकलीफ है, दिक्कत क्या किस बात की है, इसका विचार करना चाहिए। ये तो विषय का प्रतिपादन हो गया। अब इस पर जो है सभी पक्षों से, सभी पहलुओं से उसका विचार करना चाहिए।
पहली बात तो पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वाली बात आई तो सहज निश्चय रहेगा, कसा कलंक नहीं चाहिए। ऐसा जब निश्चय होगा
तो उसको ही निषेध आएगा, वरना तो निषेध आना संभव भी नहीं।
उपाय की चीज तो ये होगी।
हाँ, मात्र मोक्ष अभिलाष वाले की ये बात है। वरना तो आगे का क्रम हो ही नहीं सकता। वरना तो जो वेद ज्ञान का जो क्रम से सहज वेद ज्ञान होना चाहिए, या तो सहज रूप से जो विभाव का निषेध राग का होना चाहिए, ये क्रम में क्रम से कैसे होगा? अगर एकक्रम रूप से कोई करना चाहता है तो होने वाला नहीं, वास्तविक तौर से तो होने वाला नहीं, यथार्थ रूप से तो होने वाला नहीं। फिर कोई कृतज्ञता कर लेगा कुछ काल तक, इसका तो कोई फल नहीं है। मार्ग में प्रवेश होने, ये तो मार्ग में प्रवेश होने की बात है, मोक्ष मार्ग में आने की बात है। मोक्ष मार्ग में आना कहो या सम्यक दर्शन होना कहो, एक ही बात है, अंतर्मुख होना कहो।
तत्व का अभ्यास से हम लोग करते हैं, शरीर में अध्यात्म बुद्धि तो पड़ी है, पहले यहाँ से शुरुआत करें।
वैसे शुरुआत तो जो भी उदय भाव है उसमें चालू करना चाहें, जितने भी प्रकार के उदय भाव तो आएंगे, विभिन्न प्रकार के, हरेक को विभिन्न प्रकार के, आपको इस काल में हो, दूसरे को दूसरे काल, उसी काल में दूसरा हो। तो बात तो सामान्य तौर से ऐसी है कि हमें पूर्ण शुद्धि की अभिलाषा पूर्वक इसका निषेध आना चाहिए। जो भी विभाव हो, जो भी राग आदि हो, जो भी कृष्ण हो, जो भी सभी का निषेध आना चाहिए। निषेध नहीं होगा तो आदर तो पड़ा ही है, आदर छूटने का कौन सा उपाय है? राग का राग या विभाव का आदर, ये तो आना निषेध है। परिस्थिति को पलटा खावे जब तो काम हो। प्रश्न तो बहुत गहराई से विचार में लाए, विचार करने प्रश्न है।
विभाव में इतना कष्ट होता है, विभाग में जो एकत्र होता है, अध्यात्म बुद्धि तो उसका फल है।
अध्यात्म बुद्धि में भी विभाग में एकत्र है, और राग में भी विभाव में एकत्र है, अध्यात्म बुद्धि में परिणाम तो है देह प्रति का राग का। तो जिस राग में एकत्व हुआ राग के विषय में तो एकत्व रोक ही नहीं सकते, असंभव है कि नहीं होगा।
जो शुरुआत है वो तो विभाव के निषेध की शुरुआत है, देह के निषेध की शुरुआत है।
यहाँ से करो शुरुआत, वहां से करो ज्ञान और राग के बीच में मेरी ज्ञान चालू करने की बात है। फिर जैसे तो वैसे ही हो जाए, मिल जाएगा। ऐसा है कि वेद ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से करना है, जब दो बात हमारे सामने है कि पर पदार्थ में भी एकत्व, मेरे देहादिक पर पदार्थ उसमें भी एकत्व हो रहा है और राग में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, दोनों में एक साथ हो रहा है, तो छूटेगा भी एक साथ। ऐसा नहीं है कि किसी को देह में तो छूट गया लेकिन राग में रह गया है, और किसी को राग में छूट गया और देह में रह गया, ये भी तो बनेगा नहीं। होता है साथ में और छूटेगा भी साथ में। अब क्या है कि कोई काम ऐसा होता है कि जिसमें इस काम का कोई व्यवस्था बिठाना पड़ता है तभी काम होता है। कि जैसे हम एक टिकट बारे पर भीड़ नहीं होना देना चाहते, तो जहां भीड़ होती है वहां हम जोर नहीं लगा रहे और हम पहले से क्यू में खड़े कर दें सबको, तो सहज रूप से भीड़ भाड़ होगी नहीं, ये एक व्यवस्था का विषय हो गया है। वैसे जब हमको देह में आत्मबुद्धि नहीं करनी है तो देह में आत्मबुद्धि तो कुछ राग से होती है, तो हम देह पर लड़ाई करने के बजाय हम इस बात को व्यवस्था करने से क्यों में आ जाए, पहले राग में, राग तो नजदीक है, राग होता है, राग पूर्वक होते हैं देहात्मबुद्धि, तो राग में ही एकत्व रोक ले में वो बात ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी एक साथ। इसलिए वेद ज्ञान का प्रारंभ राग की एकत्व बुद्धि तोड़ देने से प्रारंभ करना, यही इसका व्यवस्थित मैंने योजना पूर्वक की ये एक कार्य पद्धति है, इसलिए इसको योजना कहते हैं। ये योजना बराबर व्यवस्थित है और वेद ज्ञान का प्रधान शास्त्र जो अपने यहाँ को है तो ये समय सार है। सारा समय सार में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जिसमें वेद ज्ञान नहीं चला हो, वेद ज्ञान का विषय आचार्य महाराज ने नहीं चलाया हो, ऐसा एक भी अधिकार, एक भी प्रकरण नहीं है। चाहे जीव का प्रकरण हो, अजीव का लो, कर्ता कर्म का लो, पुण्य पाप का लो, समर निर्जरा बंद मोक्ष सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, सभी अधिकारों में वेद ज्ञान की बात नहीं है। मैंने अधिकार अलग अलग होते ही, सूत्र अलग होते ही सरल सूत्र वेद ज्ञान है, वहां सारा समय सार। इस दृष्टिकोण से आप अगर समय सार को देखेंगे तो बात आपको बिल्कुल सही मालूम होगी। तो इस समय सार में प्रधान तौर से ये बात किया है कि राग और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान करना, और ये बात का प्रारंभ किया है आचार्य भगवान ने छठवीं गाथा से। समय सार की जो छठी गाथा है इसमें इस विषय का प्रारंभ कर दिया भेद ज्ञान का।
पूर्णता के लक्ष्य का निश्चित हो, पूर्णता का लक्ष्य निश्चित हो जाता है, वो विभाव के प्रति रुचि नहीं रहती है, रुचि के भाव आते हैं, निश्चित के भाव आते हैं। ऐसी दशा में जो पर के प्रति जो भी रुचि है ज्ञानादि से, वो तो नीरस हो जाएगी, वो नीरस हो जाएगी, तो उससे ज्ञान में कुछ मलिनता समाप्त होगी। ज्ञान में मलिनता, ज्ञान मलिन है पर रस से,
हाँ
वो घट जाएगी।
दर्शन दर्शन का अनुभव भी टूटता है और भेद ज्ञान का प्रयास से ज्ञान में निर्मलता भी आती ही है। ये तो विधि रूप है, जब विधि सही होगी तो इसका फल जो है वो चालू हो ही जाएगा। ये तो फल है इसका,
ऐसा कोई क्रम थोड़ा नहीं है। कभी पहले देह से भेद ज्ञान करो, विराह से भेद ज्ञान करो, फिर पर्याय से भेद ज्ञान करो,
ऐसा
कोई क्रम थोड़ा नहीं।
वास्तव में राग से भेद ज्ञान होते ही सब बात की सिद्धि है। जितना भी तीन प्रकार का उपदेश है उसकी जो सिद्धि है वो यहाँ सब ये भेद ज्ञान का प्रैक्टिकल साइड है, यानी भेद ज्ञान की प्रयोजना है। ये तो स्थूल सूक्ष्म विषय को समझने के लिए एकदम ठीक है कि ये देह का भेद ज्ञान एक स्थूल विषय समझने के लिए, प्रयोग में तो वो भी सूक्ष्म है, और राग का भेद ज्ञान इससे सूक्ष्म है, और एक समय के पर्याय से मैं त्रिकालिक भिन्न हो इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन ये एक समझ करने का विषय है। सूक्ष्म में बात कर रहा समझने की बात मर्यादा में बात स्थूल सूक्ष्म का भेद के हिसाब से, स्थूल बात पहले समझ में आती है, सूक्ष्म विषय बाद में समझ में आता है, और स्थूल बात समझ में नहीं आए तो सूक्ष्म बात कहाँ से समझ में आएगी। इसलिए ये बात स्थूल सूक्ष्म के विषय में चल सकती है, लेकिन प्रक्रिया में तो राग से ही स्वभाव और विभाव का ही भेद ज्ञान, राग से ज्ञान का भेद ज्ञान करना का मतलब स्वभाव विभाव से ही भेद ज्ञान करने की बात है। फिर ये मोक्ष अधिकार हो तो प्रज्ञाश्रेणी की बात चलेगी, समर अधिकार भी हो तो इसमें राग और ज्ञान का भेद ज्ञान का विषय चलेगा, उपयोग में उपयोग नहीं उपयोग विरोधादि में ये बात चलेगी, और शक्ति का शासन हो तो वहाँ भी ये बात चलेगी।
मोक्ष की भूमिका में विज्ञान की जो समय अवलोकन का जो विषय चला, मोक्ष की भूमिका में तो अवलोकन रूप जो प्रक्रिया है वही विज्ञान की प्रक्रिया शुरू है।
विज्ञान असल स्वभाव विभाव की पहचान नहीं है तो विज्ञान तो होगा नहीं, तो पहचान होने के लिए क्या करना है, तो परिचय करना है, परिचय करने के लिए क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा ही इस प्रकार से इसका अनुसंधान है इस विषय का। इसके पहले तो स्वभाव विभाव का पहचान ही नहीं है, तो क्या इसमें हो जाता है कि कषाय की अधिक मंदता होने से और उस अधिक मंदता में स्वभाव के विकल्प होने से उसको ही स्वभाव मान लेते हैं। जैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसे एक सूक्ष्म विकल्प जो बहुत कषाय की मंदता में आ जाएंगे तो कईयों को ये परिस्थिति होती है कि उसी को ही मान, क्या है कि थोड़ी साता का भी वेदन है तो उसी को आत्मशांति मानते हैं, उसको अनुभव की शांति मानते हैं, बुलावा होता है, इसलिए जाति की पहचान हो गई। तो सूक्ष्म का भी जो विकल्प का है विभाव का है उसको पहचान लेंगे, मैंने विभाव किसी भी रूप में उपस्थित होगा, जैसे कोई बहुरूपी है तो नया नया रूप लेकर के आता है, समय सार में ये पद्धति अपनाया जाता है, आत्मा का रूप नहीं है, वैसे स्वभाव का जो रूप है और विभाव का रूप है जाति से पहचान आ जाता है। जाति की पहचान तब आती है, परिचय होता है परिचय कैसे होता है कि बार बार देखने से परिचय होता है, इसके परिचय नहीं होता, इसलिए यहाँ से ये बात अनुसंधान होता है। भावना तीन हो गए, पूर्ण शुद्धि का ध्येय हो गए, दो बात मूल में है, परिपूर्ण शुद्धि मोक्ष अभिलाष के बाद कुछ अभिलाष नहीं, मात्र एक मोक्ष अभिलाष मात्र में ये बात, इसके सिवा कुछ नहीं, और स्वरूप प्राप्ति की भावना निरंतर है। तो क्या है, एक तो डेस्टिनेशन है, मोक्ष है वो तो आखिरी अंजाम है, डेस्टिनेशन है, और भावना है वो तो डेस्टिनेशन के प्रति की चाल है, बस बात पूरी हो गई ना, कि हमको घर जाना है और हम चलते रहे, घर जाना है और बैठे रहे तो घर कैसे जाएंगे, चलते रहे भले धीरे चले तेजी से चले एक दूसरी बात है, लेकिन चलता रहना चाहिए, ये बात है भावना की, आत्मभावना की, और केवल ज्ञान तो मोक्ष को हो, केवल ज्ञान ये अपना आखिरी गोल है, आदर्श है, दोनों बात का ये अनुसंधान, इससे सब आगे की बात चालू हो जाती है। भावना बिना अवलोकन चालू ही नहीं होगा, प्रारंभ ही नहीं होगा, विचार हो सकता है, अवलोकन नहीं होगा, अवलोकन दूसरी चीज है, विचार
दो अच्छा है, नहीं की दो बात होगी,
हाँ मुमुक्षुता में ये बात प्रारंभ यहाँ से होते हैं, मुमुक्षुता का, इसके पहले मुमुक्षुता का प्रारंभ है ही नहीं, कुछ भी क्रिया करे मुमुक्षुता नहीं है, मुमुक्षुता आएगी नहीं, शुरू नहीं हो,
शुरू नहीं होगी, तो दूर इसके अलावा जो कुछ भी करेगा वो दूर ही रहेगा,
समय में विपर्यास खड़ा रहेगा, विपर्यास समय भी सब बात होगी, जितनी भी होगी विपर्यास
नहीं, विपर्यास में दूर ही बने,
काम करना है लेकिन विपर्यास रख करके या विपर्यास छोड़ करके, ये तो निर्णय करना है।
साक्षात भावना शून्य है ना, स्वभाव में विभाव में होना रोग के भी समय है, हाँ भावना शून्य है ना, स्वभाव
जो जो पहचान है, स्वभाव और विभाव की जो पहचान है वही भाव भाषण का स्वरूप है, इस जो भाव भाषण को या पहचान को बात हुई, इसके होने के लिए अवलोकन आवश्यक है, ये परिचय का प्रोसेस है, और ये काम हमें करना है फिर भी क्यों नहीं होता है, कि हमारी भावना और हमारा जो ध्येय है वो अपने स्थान में नहीं है, तो पहले अपने स्थान में ये दो बात आ जाती है तो ये काम चालू हो सकता है, चालू होता है तो फिर बात की बात में है, अपने क्रम से विकसित होते हुए मार्ग तक पहुंचा दिया।
देह और भावना ये दोनों स्पष्ट नहीं है, देह और भावना ये दोनों स्पष्ट नहीं है,
आशा रखना ही व्यर्थ है, फिर आगे के कोई काम की आशा रखना ही व्यर्थ है, ये बिल्कुल क्लियर बात है, अंधेरे में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई खड़ा आ जाएगा गिर जाओगे,
विभाव में जड़ता है दर्शन में, विभाव विभाव में घटता है दर्शन देता
है। विभाव में जो है दुख मालूम होता है शुरू में तो, क्योंकि एक वेदन होता है विभाव में, दुख होगा और मलिनता और जड़ता, तीनों बात समझ में आती है। तो ध्यान में सुख और कषाय रहित होने से पवित्रता और चेतनता चैतन्यता, ये तीनों बात आमने सामने प्रतिपक्ष रूप है। ये बात दिया है भगवान कुंकुल आचार्य ने समय सार की बात सुची पणु विपरीत ताए आ प्रभो ना जाने में वही जाने में दुख कारणों के थी निवर्तन जीव करे प्रताकर्म विकार के पहुंचे दुख का उसका खंडन पहुंचे।
એ લોકો સ્થાનમાં નથી એ જે બાકી હોય પછી સ્થાનમાં નથી અથવા તો ભીલું છે અથવા તો યથા સ્થાનમાં છે એ કેવી રીતે સમજણ
ભાવના ચાલુ થાય ત્યારે નક્કી કર્યું કે મારે મારા ઘરે જવું છે તો પગ એ બાજુ ઉપડવાના છે પગને ઓર્ડર કરવો પડે છે તો ઓટોમેટિક ચાલે છે જે જે જગ્યાએ નક્કી કર્યું આ જગ્યાએ જાઉં છું એ બાજુ પગ ચાલવાનું ઓટોમેટિક જ થાય છે પછી તમે વાત કરો ચીપ કરો હજાર હજારના દુનિયાભરના વિચાર કરો તમારે જો પાવ એ ઊંચી દિશામાં ચલન કરેગા આપણે દુસરે કંઈ બી કાર કરતે જાઓ સાથમાં દ્વાર મેં હોતું તો વાતચીત કરતે હૈ લેકિન એક પક્કા કર લે કે હમે અમારા ઘર પર જાના હૈ તો ઘર પર જાના હોતું બાતે હોતે હોતી ऐसा ही हो जाता है परिणाम की चाल हो जाती जय पक्का हो जाने से और जय बांधने से परिणाम की चाल चालू हो जाती है। उसमें प्रथम कैसे ऊपर पैर पड़ता है पैर प्रथम कदम कैसे आता है वो भावना रूप होता है। दूसरा कदम उसका अवलोकन का होता है अवलोकन में से भाव भाषण तीसरा कदम आता है ये ज्ञान चालू हो जाता है सब जो होता है व्यवस्थित हो जाता है। ये ऐसा कोई किसी ने नहीं समझाया हो तो भी ये तो समझ में बात रखी जाती है लेकिन अगर ऐसा किसी ने नहीं समझाया हो क्रम नहीं समझाया हो तो भी क्रमभंग कार्य नहीं होगा। ये एक विशेषता है इस लाइन की कि जब वास्तविक प्रारंभ होता है यथार्थ प्रारंभ होता है तो क्रम का विपर्यास भी कहीं नहीं होगा। ये क्रम तो उघाड़ में समझ में आता है लेकिन किसी को ऐसा उघाड़ नहीं होता है समझा
जी
फिर भी उसको क्रमबंद प्रयास नहीं होता है अपने क्रम में ही वो आगे बढ़ेगा। ये विशेषता है मूल प्रारंभिक वास्तविक शुरुआत होने से। इसलिए तो गुरुदेव ने यह सूत्र दिया है पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है। तो जिसकी शुरुआत वास्तविक उसकी सब आगे की प्रक्रिया वास्तविक है। जिसकी शुरुआत वास्तविक ही नहीं इसकी कोई भी प्रक्रिया वास्तविक है ही नहीं। इसमें से आप निकलता है एक सूत्र में से बात ऑटोमेटिक निकलती है।